ओम शांति। बाबा के बेहद घर में आप सबको विशेष तपस्या का सुंदर अवसर मिला है और इतने अच्छे वातावरण के बीच में मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे अनुभव कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना सभी। बाबा का ये तपस्या स्थान जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, हमारी मातेश्वरी जी ने तपस्या की, हमारी दीदी दादी सब ने इस स्थान को बहुत अच्छे वाइब्रेशन से चार्ज किया है। जो स्थान ही अपने आप में शक्ति भी देता है, खुशी भी देता है। जिधर जाओ उधर कहते हैं कण कण में तेरी याद आती है। तो इस स्थान पर तो आप सभी सहज योगी जीवन का अनुभव कर रहे होंगे। बाबा की वर्तमान मुरलियों में विशेष जो वरदान स्लोगन अंडरलाइन होते हैं, अगर इस पर भी हम सब अटेंशन देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो बहुत सहज उड़ती कला का अनुभव होने लगता है। तो आज की टॉपिक भी हमारी बहनों ने आज के वरदान से संबंधित निकाली। यही वरदान था कि जो महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो सुख देती हैं, सुख लेती हैं अपने श्रेष्ठ व्यवहार से। बाबा ने अंडरलाइन कराया श्रेष्ठ व्यवहार। और जब हमारा व्यवहार श्रेष्ठ हो जाता है तो जो भी हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं उनको सुख मिलता है। व्यवहार की अशुद्धता कईयों को परेशान करती है, दुख देती है। और बाबा का यही एक स्लोगन शुरू से ही बच्चों को पढ़ाया गया, न दुख देना न दुख लेना। बहुत सारे कड़े कड़े शब्द साकार मुरलियों में दुख देने वालों के लिए आते हैं। हम सबको बाबा ने सुख स्वरूप बनाया है, सुख देव बनाया है। जो भी हमारे संबंध में संपर्क में आए वो हमारी हर एक्शन से सुख का अनुभव करें। तो पहले मैं आपको ऐसी कुछ बातें जिनसे सामने वाली आत्मा को सुख अनुभव होता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ने आज अंडरलाइन किया ये सुख देना पुण्य का काम है। और जब ये कोई पुण्य का काम करता है, कोई किसी को अच्छी चीज देता है, तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलती है। और आशीर्वाद जिसको मिल रही हो उसका जीवन खुशनुमा सुख स्वरूप अपने आप बन जाता है। इसलिए सबसे पहले बाबा ने हमारी इस दृष्टि को निर्मल बनाया, शीतल बनाया, क्योंकि दृष्टि का प्रभाव हमारी वृत्तियों पर पड़ता है और दृष्टि से बहुत बड़ी सेवाएं भी होती हैं। कहते हैं नज़र से निहाल स्वामी कींदा सतगुरु। सतगुरु ने हम सबको नज़र से निहाल किया है, पवित्र दृष्टि से, शीतल दृष्टि से हमारे अंदर के विष को, विकारों को समाप्त कर दिया। इसलिए हम बाबा की दृष्टि चाहते हैं। जब आपस में भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं दृष्टि एक मिनट एक सेकंड की दे दो। तो दृष्टि जिसकी शीतल है उसके वाइब्रेशन से सुख मिलता है। कहते हैं इसकी दृष्टि से बड़ी शांति सुख मिल रहा है। तो हर एक को अपनी बहुत पवित्र निर्मल दृष्टि बनानी है, शीतल दृष्टि बनानी है, और उसके आधार पीछे से आत्मा ही है। जब आत्मा अपने उस सुख स्वरूप स्थिति में स्थित रह करके किसी आत्मा को दृष्टि देती है तो सामने वाली आत्मा को सुख की अनुभूति होती है। इसलिए बाबा ने पहला परिवर्तन जो किया है वो दृष्टि का परिवर्तन किया, बहुत बड़ा ऑपरेशन दृष्टि का कर दिया, क्योंकि यही दृष्टि क्रिमिनल बन जाती है। कोई को देखती है तो उसके प्रति बहुत गलत भावनाएं भी उत्पन्न कर देती है। दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए पहले पहले हम सब अपनी दृष्टि को दिव्य अलौकिक रूहानी शीतल बनाएं, तो हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माओं को सुख की अनुभूति होगी। और फिर जिनके बीच में हम सब रह रहे हैं उस पर हमारे स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, इसके साथ रहने में भी सुख मिलता है। स्वभाव में सरलता चाहिए, सरल स्वभाव वाली आत्माओं के समीप हर एक आत्मा जाना चाहती है। आप सब ने जिन्होंने दादियों को देखा है, विशेष करके जो गुलजार दादी जी से मिले हैं, शांतामणि दादी जी से मिले हैं, इन दादियों के स्वभाव इतने सरल, जिनको देखते ही आत्मा को सुख की अनुभूति होती है, हर एक उनके समीप जाना चाहते, उनसे दृष्टि लेना चाहते, उनसे मिलना चाहते। कई होते हैं जिनके स्वभाव में थोड़ा सा शिक्षा देने वाला स्वरूप होता है, कोई भी आएगा, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या पुरसारा चल रहा है, उस स्वभाव में भी ऐसे जैसे शिक्षाएं हैं। और बाबा अपने बच्चों को वर्तमान समय कहते हैं, अभी शिक्षा देने का समय समाप्त हो गया, बाबा ने सब शिक्षाएं दे दी हैं, जो कुछ पढ़ाना था, शिक्षाएं देनी थी, सब दे दी, अब समय आ गया है कौन सा, क्षमा करने का। कोई कैसी भी आत्मा आपके सामने आती है, शिक्षा देने के बाद, शिक्षा देने के सिवाय बदले अगर आप उसको क्षमा कर दो तो क्षमा ही उसके लिए शिक्षा हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय जो भी आत्माएं आएंगी ज्ञान में, चाहे वो समर्पित हों चाहे ज्ञान में आए, वो कहीं ना कहीं कमजोर होंगी, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है और लास्ट समय में इतनी बड़ों की पालना नहीं मिली है, इतने ज्ञान की गहराई नहीं है। जो आज की मुरली में बाबा एक शब्द कह रहे थे, शायद पुराणों के ध्यान पर आई होगी बात, बाबा को अभी तक भी बहुत कम बच्चों ने पहचाना है। वो जो है जैसा है, जिसने जितना उसको पहचाना है उतना उसकी श्रीमत पर चलता है। कितना समय पहले की मुरली है ये। अब बाबा को पहचानना जो है जैसा है उसमें भी नंबर है, सबने नहीं पहचान पाया है। और अभी आने वाली आत्माओं के अंदर हम ये उम्मीद रखें कि ये संपूर्ण रीति से श्रीमत पर चलें, तो मैं समझता हूँ शायद इतना उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहचाना ही नहीं है। और जितना पहचाना है उतना एक धक से समर्पित होते हैं, बाबा के कार्य में लग जाते हैं, श्रीमत का संपूर्ण पालन करते हैं। अगर कोई कारण, कोई परवश हो जाए किसी देह अभिमान के कारण, श्रीमत को यथार्थ न समझने के कारण, तो ऐसी आत्माओं को दोष नहीं देना है। उनको हम दोषी बनाएंगे तो दूर चले जाएंगे, वो सुख का अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी कमजोर आत्माएं अगर हमारे संबंध संपर्क में आती हैं तो बहुत रहम दिल की दृष्टि से, कल की मुरली में दो शब्द बाबा के थे, अव्यक्त मुरली में संडे की, कई बच्चों की जन्म पत्री के अंदर रहम बहुत है, रहम बाबा को आता है देख करके, और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देती है। अब जो रहम वाली जन्म पत्री जिसकी है, अब उससे हम अपेक्षा रखें कि जैसा मैं चाहता हूं ऐसे इसको करना चाहिए, जो बाबा की श्रीमत है इसको एक्यूरेट इसे फॉलो करना चाहिए। तो मैं समझता हूं जैसा हम चाहेंगे वैसा वो नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो उसके प्रति हमारी भावनाएं बदल जाएंगी। भावनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की भावनाएं मेरे अंदर हैं, सामने वाली आत्मा उस भावनाओं को कैच करके सुख और दुख का अनुभव करती है। दो शब्द बाबा के आते हैं, एक भाव एक भावना। कई बार हम कह देते हैं मेरा भाव नहीं था, जरूर उसकी भावना तो होगी तब तो शब्दों में वो बात आई, लेकिन जब शब्द निकल जाते हैं तो कहते हैं मेरा भाव नहीं था, लेकिन हो गया, निकल गया। इस बात को आप समझना, अगर मेरा भाव नहीं था और निकल गया, अगर भावनाएं अच्छी हैं तो उस भाव से कोई आत्मा दुखी नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात को? थोड़ी गहरी बात बाबा की है कि अगर मेरी भावनाएं किसी आत्मा के प्रति बड़े शुभ हैं, कल्याण की हैं, और हमने बोल भी दिया कुछ किसी को, तो वो उसकी परवाह नहीं करेगा, उसे दुखी नहीं होगा, उसे डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बात उसको फीलिंग के रूप में वो फील नहीं ले करेगा, वो समझ जाएगा इसका भाव ये नहीं होगा, ये जो बोल रहा है इसके पीछे कोई शुभ भाव है, कुछ कल्याण का भाव है। क्योंकि संगठन के बीच में, परिवार के बीच में अगर हम एक दूसरे के भाव को नहीं समझ पाते हैं, केवल बोल तक सीमित रहते हैं, तो जिस आत्मा ने जिस भाव से बोला उसके भाव को न समझने के कारण बोल बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, भाव नहीं समझ पाते हैं। और भाव तभी वो समझ सकते हैं, उनके दिल में वो बात न दुख दे, जब व्यक्ति की भावनाएं बड़ी शुभ और कल्याण की होती हैं। इसलिए हम लोगों ने संगठन के बीच में, दादियों ने अगर मुझे हंसी में कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सरल भाव में बोल दिया, तो उनके वो शब्द शिक्षा वाले भी बहुत मीठे लगे, प्यारे लगे। जैसे शिव बाबा, जब बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं तो बाबा के उन महावाक्यों में कई ऐसे शब्द होते हैं, भावनाएं बाबा की बहुत शुभ हैं बच्चों के प्रति, तो वो बाबा के बोल लोगों को सुख का अनुभव कराते, फीलिंग नहीं आती। जैसे बाबा कई बार चलते चलते बोल देते तो बच्चे बंदर बुद्धि हैं, कभी कभी ऐसे मुरली में शब्द आ जाते हैं, अभी तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत नए नए बच्चे आ गए हैं, उनको ये लगता है भगवान भी ऐसे बोलता होगा क्या। और बाबा कई बार ऐसे बोल देते थे, बच्चे गधे का बच्चा गधा, कितना भी धोबी अपने गधे का श्रृंगार करता है, नहलाता है, धुलाता है, तैयार करता है, वो जब बाहर जाता है तो मिट्टी में लेट जाता है। तो मैं भी अपने बच्चों का इतना श्रृंगार करता हूँ, इतना ज्ञान योग से सजाता हूँ, और ये बच्चे बाहर जाते फिर वो देह मान की मिट्टी में लेट जाते हैं। तो कभी कभी साकार बाबा की मुरली में ऐसे शब्द आते हैं, पहले आते थे, अभी तो थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है क्योंकि नए नए बच्चों को कभी कभी फीलिंग आती है। कभी कभी बाबा कहता है जैसे भैंस जा रही हो और उसके पीछे हॉर्न बजाते जाओ, वो हटेगी नहीं। अब बाबा कितना समय का हॉर्न बजा रहा है, बच्चे अंत समय बहुत समीप है, अचानक कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो हॉर्न उनको सुनाई नहीं देता, तो बाबा कहते हैं तो भैंस बुद्धि है, हटता ही नहीं है सामने से, समय को देखता ही नहीं है। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़े पगुराए। तो आजकल की दुनिया के अंदर अपने ब्राह्मण परिवार में भी कितना भी कोई को सिखाओ, कितनी भी शिक्षाएं दो, कितने भी इशारे करो, लेकिन जैसे है वैसे ही है। तो बाबा के ऐसे कड़े शब्द हम सब ने सुने हैं और वो बहुत मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। उसमें बाबा का भाव जो है वो हमें कोई नीचे दिखाने का नहीं है, कोई हमारा अपमान करने का नहीं है, लेकिन बाबा का भाव उसके अंदर बहुत मीठा है, भावनाएं उनकी बहुत अच्छी हैं। तो बच्चों के आगे तो बाप कभी भी कुछ बोल सकता है। कई बार बाबा कहता, मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं कोई दुनिया वालों को नहीं पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई केवल मेरे बच्चों के लिए है। इसलिए बाबा के ऐसे कड़े बोल भी बच्चों को प्यारे लगते हैं, सुख देते हैं, अच्छे लगते हैं। बाबा ने कहा है, ठीक है, मैं सुधार जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा। तो अब समय अनुसार शिक्षा का रूप हमारा परिवर्तन होना चाहिए। किसी को भी अभी शिक्षा दे करके बदला नहीं जा सकता। उसके प्रति रहम भाव रखो, क्षमा भाव रखो, दया भाव रखो, शुभ भावनाएं रखो, उसको कुछ समय शक्ति दो मनसा द्वारा, जिससे वो आत्मा उस बात को समझ सके, अपनी गलती को रियलाइज कर सके। और अगर हमने डायरेक्ट रियलाइज कराने की कोशिश की तो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो लगेगा ये मुझे समझते नहीं, मुझे दुख देते हैं। हमें सुख देना है, सुख देने की एक कला आनी चाहिए, उसमें वाणी बहुत मधुर चाहिए, सम्मानजनक चाहिए। अगर हमारी वाणी पर बहुत कंट्रोल है, बहुत मधुर वाणी है, बहुत कल्याण की भावना है उसके अंदर, तो उस वाणी का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, उससे हमारे व्यवहार की शुद्धि दिखाई देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने व्यवहार को बहुत शुद्ध रखो, वाणी पर बहुत कंट्रोल रखो। निर्णय लेने के समय जो दुख की महसूसता होती है, उसका एक और कारण जो मैंने नोट किया है, जब कोई बात हमारे सामने आती है, बड़ों के सामने आती है, अगर वो सोचे समझे बिना निर्णय ले लेते हैं कोई भी बात का, सोचते नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, हमने इसको ये बात कह दी है, इसको कहाँ तक चुभेगी, क्या उसका रिजल्ट होगा, उसकी बजाय बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना, जजमेंट दे देना, मैं समझता हूँ वो दुख का कारण है। सुख देने वाली आत्माएं कभी भी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं करती। हमारी दादियों ने कभी भी किसी की बात को काटा नहीं। हमने देखा, अगर ठीक नहीं भी है, हम समझते हैं ये कुछ हो नहीं सकता, ये जो बोल रहा है ये केवल बकवास की तरह बोल रहा है, फिर भी उन्होंने उस बात को उसी समय कट नहीं किया, ठीक है इस पर विचार करेंगे। उसकी अंदर की बातों को कैसी भी थी उसको सम्मान दिया, उस समय उसको नरम किया, सुन करके उसकी बात को स्वीकार करके, अच्छा इस पर विचार करेंगे, एक दूसरे से राय करेंगे, इस तरह से निर्णय लिया। अगर तुरंत निर्णय ले लेते कि नहीं तेरी बात राइट नहीं है, रांग है, ये नहीं हो सकता, तो सामने वाली आत्मा अपना अपमान महसूस करती है, उसको अपने अंदर जो कॉन्शियस है, समझ, उसको ठेस पहुंचती है और वो दुख का अनुभव करता है। इसलिए बाबा ने ये सिखाया है कि अगर कोई बात आपको नहीं जचती है, परिवार में, संगठन में, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई अपनी राय दे रहा है, आपको नहीं लगती, ठीक नहीं है, तो तुरंत उसकी बात को कट नहीं करो। कट कर दोगे वो दूर हो जाएगा और अपने आप को अपमानित महसूस करके वो दुखी हो जाएगा। हमें सुख देना है और सुख देने की विधि यही बाबा ने सिखाई है कि हर एक की बात को पहले स्वीकार करो, सत्कार दो, और अगर गलत है तो समय पर जरूर इशारा करो, बताओ जरूर, ऐसे नहीं गलत को हमने गलत कर लिया, सुन लिया, समझ लिया। लेकिन जब कोई ऐसा समय, कई बार बाबा कहता है स्थान देखो, व्यक्ति की स्थिति देखो, वो ग्रहण करने की उसकी शक्ति देखो, उसके बाद उससे संपर्क में आओ, कांटेक्ट में आओ, उसको बताओ, महसूस कराओ कि ये जो तुमने कहा या जो तुमने बोला ये श्रीमत के अनुकूल नहीं है, श्रीमत ऐसा नहीं कहती है, बाबा इसे सिखाते हैं इसलिए ऐसा कहना चाहिए। तो दादियों ने इस तरह से हैंडल किया और उसके कारण वो सुख के देवता बन गई, सुख देवियां बन गई, सुख देने वाली बन गई। कभी भी उनकी कोई भी राय से, कोई भी श्रीमत से, कोई भी शिक्षा से हम लोगों को दुख की अनुभूति नहीं हुई। ऐसे लगता था ये जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ हमारी बात सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उससे सुख मिल रहा है। तो सुख देने वाली आत्माएं धैर्यता के साथ बात को सुनती हैं, समझती हैं, फिर निर्णय लेती हैं, सोच समझ करके, तुरंत नहीं। आजकल जो टकराव की स्थितियां परिवार के अंदर बनती हैं, वो तुरंत बोल देने से, तुरंत कट कर देने से, अपने को समझदार समझने से, अपने को अनुभवी समझने से, जो बाबा कई बार कहते हैं, कई लोग कहते हैं, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरे अच्छे अच्छे अनुभव हैं, मैं जो कहता हूँ वो राइट है, तो बाबा बड़े रमणीकता से कहते हैं, जो तुम कह रहे हो मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरे अनुभव अच्छे हैं, ये सब दिया किसने तुमको? और जब बाबा ने दिया है तो मैं क्यों आ गया? इसलिए मैं की बलि चढ़ा दो। अगर मैं करने वाली आत्मा है तो कभी भी वो दूसरों को सुख नहीं दे सकती। इसके लिए बाबा ने हमें पढ़ाया है कि बच्चे नम्रता का कवच पहन करके रहो। नम्रता आपकी सुरक्षा का एक कवच है। और जो नम्रचित आत्माएं हैं वो झुकना जानती हैं। संगठन में वो झुक करके चलने के कारण, झुकना कोई नीचा होना नहीं है, लेकिन ये निर्माणता की निशानी है। हम सब बाबा के बच्चों को वर्तमान समय किसी भी प्रकार का अहम नहीं आना चाहिए, मैं। और इसी के कारण ही संगठन में टकराव पैदा होते हैं, संगठन में दूरियां बढ़ती हैं, लोग सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। इतना अच्छा सुख का वातावरण, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा संगठन, इतनी अच्छी पालना, इतनी अच्छी पढ़ाई, जिससे हर आत्मा को सुख की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन कोई न कोई कारण से वो सुख फील नहीं होता। अपने आप को लोग अपसेट करके, मूड खराब करके, अंदर से आशीर्वाद की बजाय बद्दुआएं दे देते हैं। इस समय बाबा कहता है, बच्चे और कोई पुरुषार्थ करो या न करो, होता है नहीं होता है, बीज रूप बन पाते हो या नहीं, लेकिन दुआएं लेने का पुरुषार्थ करो। हर आत्मा, हमारे संगठन की हर आत्मा, श्रीमत प्रमाण हम अगर चलेंगे तो उसको दुआएं मिलेंगी। सबसे पहले तो हमें बाबा की दुआएं चाहिए। कहते ले लो दुआएं माँ बाप की, बाबा की दुआएं मिलती रहे। अगर हमने दृढ़ता के साथ श्रीमत का पालन किया है, कई बार यहाँ लोग एक बात को नोट करते हैं, भोली भोली माताएं हैं, परिवार हैं, इतना ज्ञान की गहराई को नहीं समझा। जब वो नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर चलने लगते हैं, तो उनके परिवार वाले लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने के बाद बाबा के ये शब्द उनको याद आते हैं कि बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना चाहिए, और दुख नहीं देना चाहिए तो मर्यादाएं टूट जाती हैं, अलबेले हो जाते हैं। बाबा ने तो ये कहा है दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए, लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करके किसी को सुख नहीं देना। इस बात को अगर थोड़ा सा हम अंडरलाइन करें कि ईश्वरीय मर्यादाएं जिसमें भगवान राजी है, भगवान प्रसन्न है, उसकी दुआएं हमें मिल जाएं, उसके लिए कई तो डिस्टर्ब होंगे ही। बाबा कहते हैं जब आप बच्चे नियम और मर्यादाओं का पालन करने लगते हो तो कई आत्माएं उसमें अपसेट होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। और अगर आपने यथार्थ बाबा की श्रीमत को नहीं समझा है, और ये बात सिर्फ याद रखी है कि बाबा तो कहते हैं बच्चे दुख नहीं देना, ये दुखी हो रहा है इसलिए हमने ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, तो क्या भूल हो गई? बाबा की दुआओं से हम वंचित हो गए। भगवान की जो छतरी थी मेरे ऊपर, उस छतरी से हम बाहर आ गए। फिर कितना भी लोगों को सुख दो, उस सुख का कोई माना नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर चल करके श्रीमत का संपूर्ण पालन करके बाबा को हमें संतुष्ट करना है, उसको राजी करना है। इसलिए जो बाउंड्री उसने बनाई है उसको हम दृढ़ता से पालन करते हैं और फिर उस नियम पूर्वक चलते हैं, तो आज नहीं तो कल टाइम लग सकता है, लेकिन वो आत्मा सुख महसूस करती है कि अच्छा है आप इतने पक्के हैं, इतने नियमों में चलते हैं, इसे बहुत अच्छा फायदा हुआ। कई बार बाबा कहता है ना, चलते चलते जो बहुत विरोध करते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, जब उनको समझ आती है, रोशनी मिलती है, तो कहते हैं ये माता, ये हमारी पत्नी, हमारा गुरु है, इसने मुझे सुधार दिया, इसने मुझे श्रेष्ठ मार्ग बता दिया। तो उस समय वो दुखी था, लेकिन आगे चल करके जितना आपके अंदर वो दृढ़ता है नियम और मर्यादाओं को पालन करने की, उतना उसने महसूस किया कि नहीं, इसी में सुख है। क्योंकि दुख और अशांति का कारण केवल एक ही है, वो है अपवित्रता। बहुत बाबा की मुरलियां इस पर चली हैं, बहुत अंडरलाइन किया है कि अगर कोई आत्मा दुखी है, अशांत हो रही है, तो उसका कारण है उसके विचारों में अपवित्रता है, विकार हैं, बुराइयां हैं। इंसान खुद दुखी नहीं है, लेकिन जब वो धारणाओं में अलबेला होता है तो दुख का अनुभव करता है। इसलिए सुख और शांति की जननी पवित्रता है, और जिस आत्मा ने इस पवित्रता के व्रत को संपूर्ण रीति से पालन किया है, उसके पास दुख नहीं आता, वो सुख स्वरूप स्थिति में रहता है। उसके द्वारा उसके वाइब्रेशन सबको सुख देते हैं। तो सुख लेना है, सुख देना है, तो इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ पालन करना है कि बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया है, इतना श्रेष्ठ जीवन दी है, मुझे अपने जीवन को बिल्कुल पवित्र और योगी बना करके रखना है। यहाँ पवित्रता है, वहाँ सुख और शांति का बहुत अच्छा अनुभव होता है। जरा भी कहीं गम की लहर नहीं आ सकती। बाबा कहता है संगम युग पर मैं अपने बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाता हूँ, बेगमपुर का बादशाह बनाता हूँ, स्वराज्य अधिकारी बनाता हूँ और बेगमपुर का बादशाह बनाता हूँ। है सभी सोचना, विचार करना, जिन आत्माओं ने ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन किया है, पहले तो स्वराज्य अधिकारी बन गए, मन बुद्धि संस्कार और ये कर्मेंद्रियां उनके आर्डर प्रमाण काम करती हैं। दुख का कारण है कर्म इंद्रियों की अधीनता। किसी भी कर्मेंद्री की जो आत्मा अधीन है, उससे कोई न कोई पाप कर्म होते हैं, विकर्म हो जाते हैं, और विकर्म की रिजल्ट में उसको दुख की अनुभूति होती है। अगर सुख की अनुभूति करनी है, सदा सुख लेना, सुख देना है, तो हम सब अपनी एक एक कर्मेंद्रिय को अपने कंट्रोल में रखें। पहली है कंट्रोलिंग पावर और फिर है रूलिंग पावर। दो पावर बाबा की याद से, योग से हम आत्माओं को प्राप्त होती हैं। पहले हम कंट्रोलर बनते हैं, किस पर? दूसरों पर नहीं, अपने संस्कारों पर, अपने संकल्पों पर, अपनी बुद्धि पर। जब मन बुद्धि संस्कार, ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, तब हम रूलर बन करके, राजा बन करके अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय, आँख नाक मुख हाथ कान, कोई भी इंद्रिय मुझ आत्मा को धोखा नहीं दे सकती। अगर सुख की अनुभूति करनी है, सुख देना और सुख लेना है, तो सबको इस बात को अंडरलाइन करना है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मेरा अपने ऊपर राज्य है, और मैं अपने पर राज्य अगर कर रही हूँ, तो मेरे वाइब्रेशन से, मेरी दृष्टि से, मेरी वृत्ति से, मेरे बोल से, मेरे व्यवहार से हर आत्मा को सुख की अनुभूति होगी। जब परवश स्थिति है, इंद्रियों के अधीन हो गए, अपना राज्य खत्म हो गया, तो इंद्रियां आत्मा को दास बना देती हैं और वो दुख का अनुभव कराती हैं। परतंत्रता दुख देती है, स्वतंत्रता सुख देती है। संगम युग पर हम सबको एक चेकिंग करनी चाहिए, क्या मैं आत्मा संपूर्ण स्वतंत्र हूं? सतयुग में तो वर्षा मिलेगा जीवन मुक्ति का, मुक्ति का, लेकिन संगम युग पर अगर हमने इसका अनुभव नहीं कर पाया, मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पाया, स्वतंत्र स्थिति का अनुभव नहीं कर पाया, तो कभी सुख का अनुभव नहीं होता। देखना अपने आप से, पूछना अपने आप से, सचमुच मैं स्वतंत्र हूं, कोई भी बंधन मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। अगर आकर्षित कर रहा है तो दुख है, और अगर हम बंधन मुक्त स्थिति में है तो सुखी है। देह का बंधन आत्मा को दुखी कर रहा है, संबंध जो मिले थे संबंध सुख के लिए थे, संबंध ही बंधन बन गए हैं, संबंधी कहलाते हैं संबंधी, और डाल रहे एक दूसरे को बंधन में, बंधन दुख दे रहा है। संस्कार, वो अपने ही संस्कार अपने आप को दुखी कर रहे हैं, बंधन में बांधे हुए हैं। बार बार न चाहते हुए भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल जाते हैं, कर्म कर हो जाते, आत्मा परवश हो गई है, अधीन हो गई, और इस कारण उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत काम होते, विकर्म होते, और उसकी सजा तुरंत मिलती है। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे धर्मराजपुरी का इंतजार नहीं करो, इसी समय अगर कुछ भी ऐसा किया तो उसकी सजा तुरंत मिलती है, आपकी खुशी गायब हो जाती है, अतीन्द्रिय सुख से आप वंचित हो जाते हो, आपका योग टूट जाता है। सजा कोई बाद की मिलेगी, या वर्तमान में ही आपकी स्थिति जो इतनी खुशनुमा होनी चाहिए उसकी बजाय आप गम का अनुभव कर रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं। इतनी श्रेष्ठ जीवन जिसमें डायरेक्ट भगवान से हमारा कनेक्शन है, उनकी पालना मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, श्रेष्ठ मत मिल रही है, हर प्रकार से बाबा अपने बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, साथ का अनुभव करा रहे हैं, सब खजाने अनुभव करा रहे हैं, इतनी श्रेष्ठ जीवन भी उस आत्मा को खुश रहने नहीं देती। आप सब इस पर विचार करना कि अगर इतना सब बाबा ने हमें प्राप्त कराया है, फिर भी अगर मैं आत्मा उस सुख का अनुभव नहीं कर पा रही हूं तो कारण क्या? जरूर कहीं ना कहीं सूक्ष्म अवज्ञाएं हो रही हैं। जो ईश्वरीय आज्ञाएं मिली हुई हैं, जो हमारे लिए बाबा ने एक सुंदर बाउंड्री बनाई है, उस बाउंड्री को हम कहीं ना कहीं क्रॉस कर गए। जरा भी अंगूठा निकाला, बुद्धि से भी बाहर आए तो शोक वाटिका, तुरंत शोक का अनुभव होने लगता है। इसलिए जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं की बाउंड्री के अंदर रहने वाले हैं, जो अपने को अपनी एक एक इंद्रिय को उस बाउंड्री के अंदर रखते हैं, वो सुख स्वरूप है, उनसे लोगों को सुख मिलता है और वो सुख का अनुभव करते हैं। और अगर बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, कहीं पर भी अपनी मन मत या परमत उसमें ऐड कर रहे हैं, तो आत्माएं कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए पहले तो परमात्म दुआएं लो, और फिर हमारा ये परिवार है, एक दूसरे को समय पर साथ दे करके, सहयोग दे करके, समझ करके, सर्वगुण हैं, सर्वशक्तियां हैं, बाबा के सब खजाने हमारे पास हैं, लेकिन एक खजाना अगर नहीं है तो कोई भी खजाना काम में नहीं आता। तो कौन सा? ज्ञान का खजाना, समय का, माना समझ का खजाना। अगर कोई समझ करके नहीं चल रहा, ज्ञान माना कि आत्मा परमात्मा का, तो ये तो सुनने सुनाने वाला ज्ञान है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा जिसको बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा, वो ज्ञानी तू आत्मा अगर ज्ञान को प्रयोग में लाती है तो समय पर उस शक्तियों को काम में लाती है, समय पर उस गुणों को काम में लाती है। अगर ज्ञान स्वरूप ही नहीं है, ज्ञान उसके जीवन में नहीं है, लौकिक में भी अगर कोई कार्य आप करने जाते हो, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, सब जानते हो और सब प्रकार का पता भी है, लेकिन समय पर अगर आपने ज्ञान की शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो उस कार्य में सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं होती है। ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है, ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान दिया है, इसलिए ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। ज्ञान एक शक्ति है, और जिसके पास ज्ञान की रोशनी है, ज्ञान की टॉर्च है, उसके पास जीवन में अंधकार हो ही नहीं सकता। अंधकार है अगर, कहीं ठोकर लग रही है, कहीं धोखा मिल रहा है, कहीं दुख मिल रहा है, तो उसका कारण है रोशनी की कमी है। इसलिए ज्ञान को यथार्थ समझना, समझदार बन करके कहते हैं सोचो समझो फिर करो, सोचो समझो फिर बोलो। ऐसे नहीं बोल दिया हो, निकल गया हो गया, उसको बाबा कहता है ज्ञानी है ही नहीं, वो तो अज्ञानी है, करने के बाद सोच रहा है, बोलने के बाद सोचता, ऐसा नहीं बोलते तो अच्छा रहता। तो बाबा ने अपने बच्चों को पहले कहा पहले ज्ञानी तू आत्मा बनो, चारों ही सब्जेक्ट का एक दूसरे की सब्जेक्ट से कनेक्शन है। कोई कहे मैं तो योग लगाना जानता हूं, मुझे योग बड़ा अच्छा लगता है, बाबा ने हमें योग कहा है, बच्चे योग से ही विकर्म विनाश होंगे, योग से ही आत्मा पावन बनेगी, योग ही करो। लेकिन ज्ञान पर उसका ध्यान ही नहीं है, ज्ञान बुद्धि में इमर्ज नहीं रहता है, समय पर काम नहीं आता है, कोई ना कोई कर्म गलत हो जाते हैं, और गलत कर्म जिसके हो रहे हैं उसका योग लगेगा ही नहीं। कितना भी आप बैठे रहो जा करके बाबा के कमरे में मेडिटेशन करो, योग तो उसी का लगता है जिसके पास ज्ञान की शक्ति है, जो सोच समझ करके बोलता है, चलता है, कर्म करता है, हर काम में पहले सोचता है फिर बोलता और करता है। ज्ञानी तू आत्मा बन करके रहता है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके कर्म इंद्रियों को प्रयोग में लाता है। ये कर्म इंद्रियां मेरी हैं, मैं कर्म इंद्रियों के गुलाम नहीं हूं। जहां गुलामी है वहां दुख है, परतंत्रता दुख देती है, और जहां स्वतंत्रता है, जहां मालिकपन की स्थिति है, वहां सुख है। तो हम सब सुख स्वरूप आत्माएं हैं, और सुख स्वरूप बन करके एक दूसरे को सुख दे सुख ले, न दुख दे न दुख ले, उसके लिए सब अंडरलाइन करना कि मैंने पहले ज्ञान को अपने स्वरूप में लाए, ज्ञान का अच्छा मनन करें, चिंतन करें, उसकी गहराई में जाएं, तब योग लग जाएगा। और जिसका ज्ञान और योग ठीक है, अटेंशन है, उसके जीवन में दिव्य गुण अपने आप आते हैं, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। योग परमात्मा के साथ है, कनेक्शन है, तो एक तरफ ईश्वरीय गुण आते हैं, जो हमारे सात गुण हैं आत्मा के, उसके अंदर वृद्धि होती है, और साथ साथ जो दैवी गुण हैं, देवताओं के गुण हैं, वो कर्म में वर्तमान समय दिखाई देते हैं। देवताएं गुणवान हैं, हम उनकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, लेकिन उसका नशा होगा देवताओं को, उनको अवगुणों का पता ही नहीं है। संगम पर कॉन्ट्रास्ट है हमारे सामने कि ये अवगुण है ये गुण है। तो जिस आत्मा ने इस समय गुणों को अपने जीवन में धारण किया है, वो आत्मा उस तरह के खुशी का सुख का अनुभव करती है। कोई भी गुण है हमारा जो दूसरों को सुख देता है, अवगुण हमेशा दुख देता है। तो गुणवान व्यक्ति सुखदाता अपने आप बन जाता है। और चौथा जो सेवा की सब्जेक्ट है, बाबा कहता सेवा जो मेन सब्जेक्ट ब्राह्मणों के लिए है, सेवा ब्राह्मणों का श्वास है, लेकिन अगर उस सेवा में खुद की स्थिति डगमग होती है, सेवा के द्वारा कोई दूसरी आत्माएं डिस्टर्ब होती हैं, कितना भी वृद्धि करो, कितना भी विस्तार करो, उस सेवा की मार्क्स जमा नहीं होती, केवल दिखावे की सेवा है वो। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं सेवा का अर्थ है सुख देना, सुख लेना, शक्तिशाली बनना, दूसरों को शक्तिशाली बनाना, अपना संबंध बाबा से जोड़ करके रखना, दूसरों के संबंध बाबा से जुड़ा देना। अगर संबंध टूट रहा है, बाबा से दूरी बढ़ रही है, परिवार से दूरी बढ़ रही है, तो उसको सेवा नहीं कहते, उससे सुख नहीं मिलता। इसलिए सेवा एक मेन सब्जेक्ट है, और सेवा करने के बिना ब्राह्मण आत्माएं नहीं रह सकती। बाबा कहते बच्चे सेवा में हर आत्मा को सुख पहुंचाओ, जो कुछ करो उससे सुख की अनुभूति हो, लोग फील करें, महसूस करें, इसकी सेवा से, इसके स्नेह से, इसने जो कुछ कहा जो कुछ किया उससे मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई। तो सुख देना सुख लेना, ये चारों सब्जेक्ट एक दूसरे पर निर्भर हैं, और जिस ब्राह्मण आत्मा का इन चारों सब्जेक्ट पर ध्यान है, वो सुख देते हैं सुख लेते हैं, न दुख देते हैं न दुख लेते हैं। कई बार हम लोगों का एक अटेंशन रहता है कि मुझे किसी आत्मा को दुख नहीं देना है, लेकिन अगर कोई सामने से दे रहा है, मान लो मेरी अपनी अच्छी स्थिति है और कोई ईर्ष्या के कारण, अनुमान के कारण मेरी ग्लानि करता है, वो तो ये समझ नहीं रहा है कि मैं आत्मा इसको दुख दे रही हूँ, लेकिन ईर्ष्या के बस इधर उधर मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है और वो बात, सुनी सुनाई बात मैंने अपने कानों में ले ली, मैं दुखी हो गया, परेशान हो गया, मेरे लिए ऐसे सोचते, मेरे लिए ऐसे बोलते। और बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है, तुम अपने ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में यथार्थ रीति से, संपूर्ण रीति से चल रहे हो, पालन कर रहे हो, कभी भी सुनी सुनाई बातों के आधार से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करो। कभी कभी कहेंगे बड़ी बहन जी आपके लिए ऐसे बोल रही थी, बड़े भाई तुम्हारे लिए ऐसे बोल रहे थे, बाबा के मधुबन घर में भी बाबा तुम्हारे लिए ऐसे बोल रहा था। अरे किस भाव से बोला था, क्यों बोला था, उसके भाव को न समझ करके सुनी सुनाई बातों को हमने अपने जीवन में उतार लिया और फिर उससे डिस्टर्ब हो गए, अंदर अंदर उसके प्रति हमारे नेगेटिव संकल्प चलने लगे, जो हमारी खुशी का पारा था वो डाउन हो गया, जो सुख स्वरूप स्थिति बननी चाहिए उसके बजाय हम डिस्टर्ब हो गए। एक बहुत बड़ी बीमारी इस समय चल रही है, वो है फीलिंग की फ्लू। जैसे वो फ्लू हो जाता है ना, थोड़ा सा भी हवा पानी चेंज होता है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी छोटी छोटी बातों को एकदम पहाड़ बना देती और सोच सोच करके उस फीलिंग के फ्लू में, जैसे वो फ्लू वाला बिस्तर पकड़ लेता है ना, ऐसे वो मूड खराब हो गई, कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, संगठन अच्छा नहीं लगता, मुरली अच्छी नहीं लगती, परिवार अच्छा नहीं लगता, बस मैं तो अकेला रहना अच्छा लगता है। बाबा कहते कब तक अकेले रहोगे, और माया अकेला बना करके ही वार करेगी, इसलिए ध्यान देना, अकेले अकेले में ज़्यादा किनारा करके परिवार से नहीं रहना। परिवार में बातें तो होती हैं, संस्कार हैं, स्वभाव हैं, कुछ हमने किए, हिसाब किताब है, और वो बातें संगठन में आती हैं और आ गई तो जिसकी नेचर में डोंट केयर करने का संस्कार, कोई बात नहीं, इन्होंने बोला, कोई हर्जा नहीं, कुछ होगा हम सुधार लेंगे, वो कभी भी अपनी खुशी गायब नहीं करते। ठीक है, हमारी कोई कमी कमजोरी है, इन्होंने इशारा किया है, मैं अपने को बदल लूँगा, लेकिन अगर उस आत्मा ने उस बात को अंदर ले लिया, बोलता नहीं है लेकिन अंदर अंदर सोचता है, मेरे लिए ऐसे बोल दिया, मेरे लिए ऐसे कह दिया, अब उसकी स्थिति अंदर अंदर डिस्टर्ब हो गई। और ये फीलिंग का फ्लू, जिसको बाबा कई बार कहते हैं एक शब्द, मूड बदलने वाला, मूडी, और मूड बदलती है जिसकी बार बार। अभी अभी देखो तो एकदम खुशनुमा मूड है, उमंग उत्साह वाली मूड है, ऐसे लगता है जैसे एकदम जंप लगाने वाली आत्मा है, और कोई ने थोड़ा सा उसकी बात कान में डाल दी, तेरे लिए ऐसे बोल रही है, तेरे लिए ऐसे कहते हैं, वो सारा उमंग उत्साह का पारा एकदम खत्म हो गया। और बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं गैस का गुब्बारा है, उड़ता है तो एकदम आसमान में चला जाता है और जब हवा निकलती है तो एकदम डाउन हो जाता है। हम बच्चों को ऐसी स्थिति नहीं बनानी है। हर एक बाबा के बच्चे जो योग कर रहे हैं, जो इतना अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, वो ध्यान दो, ऐसी कोई भी बातें आए, मेरी स्थिति अचल अडोल एक रस रहे, हलचल में ना आए। अगर हलचल वाली स्थिति है तो कभी खुशी कभी गमी, कभी सुख देंगे कभी दुखी हो जाएंगे, कभी सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करेंगे कभी निराश उदास हो जाएंगे। तो हम सब बाबा के बच्चों को अपने आप पर अटेंशन देना है और इस समय के सुख स्वरूप स्थिति के आधार से, संगम पर जिस आत्मा की दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, स्वभाव से, हर कर्म से, व्यवहार से सुख मिल रहा है, भक्ति मार्ग के अंदर भी हमारे दर्शन से लोग प्रसन्न हो जाएंगे। मूर्ति के आगे एक सेकंड जाते हैं, देखा होगा मंदिरों में, कई मंदिरों में जो लाइन लगती है ना, एक सेकंड खड़े नहीं हो पाते, लेकिन हमने दर्शन कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, और उस दर्शन से इतने प्रसन्न हो जाते हैं जैसे सब कुछ पा लिया। कैसे, क्यों, एक मूर्ति प्रसन्न कर रही है और हम चैतन्य मूर्तियां, और हमारे सामने कोई आए डिस्टर्ब हो जाए। ध्यान देना हमको बाबा क्या बनाना चाहता है, कि भक्ति के अंदर भी जो आपकी जड़ मूर्तियों में जाए उसके भी गम दूर हो जाए, ऐसे संगम पर चैतन्य में आप बच्चे बने हो, तो जितना हमने पवित्रता को धारण किया, जितना नम्रता को धारण किया, जितना सरलता और मधुरता को धारण किया, जितना धैर्यवत होकर के यथार्थ निर्णय किया, उतना हम सुख स्वरूप बन गए, सुख देवता बन गए, और सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं, कहीं गम की कोई दुख की बात आ ही नहीं सकती। तो सभी बाबा के घर से एक संकल्प करना, मुझे बेफिक्र बेगमपुर का वासा बनना है। कुछ भी हो दुनिया के अंदर, बाबा मेरे साथ है, गम की लहर आ नहीं सकती। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने तो दुख धाम का किनारा छोड़ दिया, किनारा ही छोड़ दिया, सुख के सागर में आ गए, सुख के परिवार में आ गए, सुख के संगठन में आ गए। आप बच्चों के पास दुख की लहर भी नहीं आनी चाहिए, टच भी न करें। कितनी भी घटनाएं हो रही हैं, कितनी भी पेपर्स आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, ऐसी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति बना लो जो परीक्षाएं आपकी खुशी को, आपके आंतरिक सुख को गायब न कर पाए। उसके लिए अटेंशन देना, चारों सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना, और ये जो मूल गुण हैं, उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना। जिसने अपने जीवन में इन गुणों को अटेंशन दे करके धारण किया है, वो सुख देता है, सुख लेता है। क्योंकि व्यवहार ही आत्मा के जीवन का दर्पण है। अगर हमारी जीवन अच्छी है, अगर हमारे संकल्प बड़े शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, तो हमारे व्यवहार के अंदर हर आत्मा को सुख की अनुभूति होगी। नहीं तो व्यवहार में ही जरा भी नीचे ऊपर होता है तो संगठन डिस्टर्ब हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, कई स्थानों पर एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, किनारा कर लेते हैं, क्लासेज टूट जाती हैं। उसका कारण है व्यवहार अशुद्धि। और अगर व्यवहार में शुद्धता है तो परिवार एक हो जाता है। कितनी भी बातें आए, कैसी भी शिक्षाएं सावधानियां मिले, उनकी कोई परवाह नहीं करता। तो हम सब ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को समझ करके व्यवहार शुद्धि के आधार से अपने परिवार की दुआएं लें, बाबा की दुआएं लें, और अपने सुख स्वरूप स्थिति से सबको सुख देते चले। ठीक है, ओम शांति।